Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Mandakopanishad, presented by Swami Sri Akhandanandagiriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Om Tat Sat. Tattvam na janami kidrishosi maheshwara yadrishosi mahadeva tadrishaya namo nama yo asau so aham yajami. Om Shanti. Om Tat Sat Brahmane Namah. Jagradati Trayonamuktam Jagradati Mayam Tatha Omkar Iksu Samvedyam Yatpadam Tannamabhya. Mandukya Upanishad Atharavved se iska sambandh hai. 12 isme kul mantra hai. उन 12 मंत्रों को विषय की दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है. उसको आगम प्रकरण कहते हैं, वेतथ्य प्रकरण, अद्वैत प्रकरण और अलाद शांति. ये 4 मंत्र 12 है. विषय की दृष्टि से 4 उसके भाग किए गए, 4 स्टेप बनाए गए समझने के लिए कि ये पहला कदम, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा. इन 12 मंत्रों को समझाने के लिए गौड़पादाचार्य जी उन्होंने 215 कारिकाएं लिखी, श्लोक बनाए, और शंकराचार्य जी ने मंत्रों सहित उन 215 कारिकाओं का भाष्य, उसकी व्याख्या की. विषय की दृष्टि से और साधना की दृष्टि से ये उपनिषद ऐसी है कि उत्तम अधिकारी के लिए भी इसका प्रयोग है, मध्यम अधिकारी के लिए भी इसका प्रयोग है और निम्न अधिकारी के लिए भी इसका उपयोग है. किसी भी विषय को जानने के लिए, समझने के लिए उत्तम अधिकारी का अर्थ होता है जो विवेक वैराग्य संपन्न है, षड संपत संपन्न है और मुमुक्षुत्व ही उसका एकमात्र ध्येय है कि मुझे तो स्वयं मोक्ष के और किसी चीज की आवश्यकता नहीं. और उसके लिए जो तैयारी है, विवेक वैराग्य श्रद्धा समाधान उपरति प्रतीक्षा आदि ये गुण जिसमें आ चुके, उसके लिए तो केवल महावाक्य श्रवण इतने में ही बात खत्म हो जाती, उसको किसी और चीज की जरूरत नहीं होती. और जो पूर्व जन्म से ही अपनी साधना में लगे हुए आ रहे हैं उनके लिए महावाक्य भी नहीं है, उनके लिए तो इशारा मात्र ही काफी. जैसे सनत कुमारों के लिए दक्षिणा मूर्ति के रूप में भगवान शंकर केवल तर्क मुद्रा, केवल इशारा करते हैं ज्ञान मुद्रा से और वो समझ जाते हैं कि बात क्या. तो कईयों के लिए तो महावाक्य ही बहुत है. जो मध्यम अधिकारी हैं, जिनमें कुछ कुछ वैराग्य है और कुछ कुछ वैराग्य का अर्थ होता है जिस चीज की हमें जरूरत नहीं उस ओर ध्यान ना देना, और जिस चीज की हमें जरूरत है हर समय उसी का चिंतन करना, इसको अभ्यास कहते हैं। वैराग्य और अभ्यास का अर्थ इतना ही है कि जिसकी आवश्यकता नहीं उसकी ओर ध्यान ना दें। अगर मोक्ष की आवश्यकता नहीं तो कोई जरूरत नहीं उसकी ओर ध्यान दें, उसकी बातें सुने। तो हमें जिस चीज की आवश्यकता हो उधर ध्यान दिया जाए तो बाकियों से वैराग्य हो जाता है, अपने आप ही बाकी छूट जाती। तो जो अधिकारी अभी पूर्ण नहीं है, बीच का है, उसके लिए इसमें ये कदम बनाए गए, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, चौथी अवस्था। ये जो अवस्थाएं बनाकर समझाया गया उस तत्व को, ये मध्यम अधिकारी के लिए है, क्योंकि उत्तम अधिकारी के लिए तो इसका आयाम आत्मा ब्रह्म ये बस वहां वाक्य है, इसी में बात सब कुछ आ जाता। मध्यम अधिकारी के लिए इसकी व्याख्या है कि ये जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इनमें जो एक ही रहता है, हमेशा एक रूप रहता है, वो तुरीय तत्व। और ये शुरू में पहले मंत्र में ये प्रतिज्ञा की गई है कि ओम इति एतद् अक्षरम इदम सर्वम, ये सब कुछ ओम ही है। जो कुछ भी आप देख रहे हैं, इदम सर्वम, ये ओम ही है। और ओम अक्षर है, इसलिए जो कुछ भी आप देख रहे हो सब अक्षर ही है। अक्षर का अर्थ ये भी होता है जिसका क्षय कभी ना हो, और अक्षर का अर्थ प्रतीति मात्र भी होता है। शब्द जो हैं, शब्दों में अपने आप शब्द प्रतीति मात्र है। प्रतीति मात्र का अर्थ होता है कि अगर फर्ज करो हमें हमारी किसी ने प्रशंसा की तो उससे कुछ मिला मिलाया नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ हुआ अंदर, जिसकी प्रशंसा हुई है। अगर हम कहते हैं कि इस तरह का हमने आज तक न कभी देखा था न कभी सुना था, जो आज इन्होंने हमें दिखा दिया और सुना दिया, ऐसा जब हम कहते हैं तो वो जो जिसके लिए भी कहते हैं तो ये शब्द ही, इसमें से कुछ दिया लिया कुछ नहीं है, लेकिन इससे जीवन में उसके कुछ हलचल सी होती। प्रशंसा से अगर कुछ हमारे अंदर घटित होता है तो उसको कहते हैं प्रतीति मात्र, यथार्थ नहीं है, असलियत नहीं है। प्रतीति मात्र का अर्थ है थोड़ी देर के लिए रहेगा फिर खत्म हो जाएगा। प्रतीति मात्र का अर्थ यह है कि अभी प्रशंसा है तो कल को निंदा भी हो सकती है, और दोनों को अगर आप प्रतीति मात्र समझते हो तो कोई चिंता नहीं, क्योंकि ये भी नहीं रहनी और वो भी नहीं रहनी। अर्थात जो मेरी प्रतिक्रिया प्रशंसा को सुनकर हुई है ये भी कोई ये नहीं है कि उम्र भर बनी रहेगी, और जो निंदा सुन के हुई है वो भी भूल जानी, कभी याद आ जाएगी तो आ जाए। तो इसको कहते हैं प्रतीति मात्र। अक्षर जितने भी होते हैं, शब्द जितने भी होते हैं, ये सब प्रतीति मात्र है। इसलिए अक्षर शब्द का अर्थ प्रतीति भी है, और अक्षर का शब्द जिसका क्षय कभी ना हो ये भी। तो जब वो ये कहेंगे ओम इति एतद् अक्षरम इदम सर्वम, ये जो कुछ भी आप देख रहे हो ये सब ओम ही है, तो इसके दोनों ही अर्थ हैं कि ये नाशवान नहीं है जो कुछ भी देख रहे हो, और ये असलियत भी नहीं है जो कुछ देख रहे हो। ना तो ये नाशवान है, और ऐसा कहो कि ये नाशवान नहीं है ऐसा भी नहीं। इसलिए इसको अनिर्वचनीय कह देते। अनिर्वचनीय का मतलब है कि जो हो भी और ना भी हो, नजर आ रहा है इसलिए है भी, लेकिन ये प्रतीति मात्र है केवल, इसलिए इनका होना ना होना बराबर जैसा है। तो प्रतीति मात्र, शब्द मात्र, ओंकार को लेकर ये उपनिषद शुरू हुई। इसके दूसरे मंत्र में उन्होंने कह दिया अयम आत्मा ब्रह्म। दूसरे मंत्र में इस सब को उन्होंने ब्रह्म कहा, सर्वम ही एतद् ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। पहले में ये कहा है कि ये सब कुछ ओम है, दूसरे में ये कहा कि सर्वम ही एतद् ब्रह्म। पहले में इदम शब्द का प्रयोग किया गया है, दूसरे में एतत् और अयम का प्रयोग किया गया, अर्थ दोनों का यह, जिसको हम हिंदी में ये कहते हैं कि ये सब कुछ ओम ही है। फिर उन्होंने कहा ये सब कुछ ब्रह्म ही है। देखो, जहां संस्कृत भाषा में जिन्हें मेरे जितनी आती है, अर्थात थोड़ी बहुत इधर से सुन सुनाकर, कोई बहुत गहरी मेरा संस्कृत का ध्यान नहीं है, केवल इतनी बात ध्यान में रखनी होती है कि जहां इदम शब्द आएगा उसका अर्थ भी ये है। जैसे इदम पुस्तक के लिए भी कह सकता हूं, इदम इस मेज के लिए भी कह सकता हूं, इदम चश्मे के लिए भी, ये इसका अर्थ है ये पुस्तक है ये, और अयम का अर्थ भी ये है। फर्क दोनों में यह है कि जहां इदम शब्द लगेगा वो जिसको भी हम ये कहेंगे वो इंद्रिय गोचर होगा, आंखों से दिखलाई दे जाएगा, हाथ से पकड़ा जा सकता है, कुछ उस बुद्धि की पकड़ में आ सकता है अंतर। जहां अयम कहा जाएगा वो ये तो कहेंगे हम कि ये है, ये ब्रह्म है। अयम शब्द तो लग गया, अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है, लेकिन जहां पर वो अव्यक्त हो, नजर ना आए और फिर भी उसको ये कहना पड़े तो वहां अयम शब्द लग जाता है, एतत् शब्द लग जाता है, इदम और एतत्। इसका अर्थ ये हुआ कि वही जो हमें सामने नजर आ रहा है, इस ब्रह्म को हम ओम कह सकते हैं, और जो नजर नहीं आ रहा, जो उसका अव्यक्त रूप है, उसको हम आत्मा कह देते हैं। ये जिसको हम ओम और आत्मा, ये दोनों ब्रह्म के ही नाम हैं। जहां ब्रह्म नजर आए, दिखलाई दे, हम इंद्रियों की पहुंच में आ सके, वहां तो उसके लिए ओंकार शब्द, और जहां वो अव्यक्त रूप से है, नजर नहीं आ रहा, वहां उसके लिए आत्मा शब्द। इसको ही वेदांत की पुस्तकों में कारण ब्रह्म और कार्य ब्रह्म कहते हैं। कार्य उसको कहते हैं जो नजर आता है, कारण कभी किसी चीज का नजर नहीं आता, लेकिन ये सिद्धांत होता है कि कारण कार्य में अनुस्यूत रहता है, कारण कार्य में ही छुपा रहता है, लेकिन वो नजर नहीं आता नाम और रूप की वजह से। नाम रूप बदलते ही कारण उज्जवल हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए कहते हैं कि हम घड़ा एक शब्द है, तो घड़ा कहते ही उसका एक नाम और एक रूप है घड़े की, तो मट्टी जो उसका असली कारण है, घड़ा कहने से मट्टी शब्द गायब हो जाता, मट्टी से नजर चली जाती, लेकिन जिसकी कारण दृष्टि है, कार्य दृष्टि में हमेशा दुख है, कारण दृष्टि में सुख ही सुख है। जितने उपद्रव हैं, जितनी भी उपाधियां हैं, वो कार्य दृष्टि में है, जो नजर आ रहे हैं। इन सब का जो कारण है उसमें कोई परेशानी नहीं, कोई इतने दिनों से जो हम करते रहे हैं इसमें नींद या सुषुप्ति कारण है, उसमें कोई परेशानी नहीं। उसमें सोए हुए हैं, सोए हुए हैं। जितनी परेशानियां हैं वो जागृत की हैं और स्वप्न की। ये कार्य है और वो नींद कारण है, बीज अवस्था उसको कहते हैं। तो इस तरह से ओम या ओंकार, इसको कार्य ब्रह्म भी कहते हैं, क्योंकि कार्य ब्रह्म से कोई कार्य हो सकेगा। घड़ा अगर कार्य है तो घड़े से कुछ काम भी हो सकेगा, उसमें पानी भर लेंगे, वो घड़े को तबले की तरह बजा भी लेंगे। घटकम तो एक इंस्ट्रूमेंट है, साउथ इंडियन घड़ा बजाते हैं गीत के साथ, तो उससे हम काम भी ले सकते हैं। मिट्टी को बजा नहीं पाएंगे, मिट्टी में पानी नहीं भर पाएंगे। तो जहां कार्य होगा उससे हम कुछ काम भी ले सकते हैं। ओम से आप काम भी लेंगे, इसका चिंतन भी होगा, इसका ध्यान भी होगा और इसका जाप भी होगा। ब्रह्म का ना तो ध्यान है कहीं, ना ही ब्रह्म का जाप है कि आप बैठे बैठे ब्रह्म ब्रह्म करते रहो। तो इस तरह से कार्य और कारण, ये दो बातें सामने आती हैं जब हम इनकी व्याख्या करते हैं। तो कहना केवल यही है कि जिसको उन्होंने पहले इदम कहा उसी को अयम भी कह दिया। बतलाव ये रहे हैं कि जो नजर आ रहा है वो भी वही है, जो नजर नहीं आ रहा वो भी वही। व्यक्त और अव्यक्त ये दो स्थितियां हैं, जैसे जागृत स्वप्न और सुषुप्ति आपकी स्थितियां हैं, ऐसे ही समष्टि में ये व्यक्त और अव्यक्त ये स्थितियां। व्यक्त को जो नजर आता है, व्यक्त को ओंकार कह लेते हैं, ओम कह लेते हैं, अव्यक्त को आत्मा कह लेते हैं या परमात्मा कह लेते हैं। ओंकार में भी मात्राएं कल्पित की गई, आ ऊ और मा ये कल्पित किए गए, असल में ओम में ये है नहीं, लेकिन समझने के लिए समझाने के लिए तीन मात्राएं कल्पित की गई कि आ ऊ मा और अमात्र। उधर जिसको अव्यक्त ब्रह्म कहा था, आत्मा कहा था, उसको समझाने के लिए जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुरीय ये उसमें कल्पना की गई। को स्थूल रूप से जब देखोगे तो आ ऊ मा और अमात्र। जब सूक्ष्म में चिंतन अपने पर लाकर चिंतन करोगे तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुरीय। ये भी ध्यान में हमेशा रखना कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुरीय ये अवस्थाएं हैं, ये आप नहीं हो, ये आत्मा को समझाने के लिए कल्पित की गई आत्मा की अवस्थाएं। आत्मा कभी जागता नहीं है, कभी सोता नहीं है, कभी कुछ नहीं, वो तो एक जैसा रहता है। इसीलिए मैं शब्द बीच में आत्मा का प्रतिनिधित्व करेगा। जब आप कहोगे मैं सोया, मैंने स्वप्न देखा, मैं जागा, तो मैं हर स्थिति में एक जैसा रहेगा। मैं सोया, मैं जागा, मैं किया वो किया, ये जो मैं शब्द आते रहेंगे, ये असल में हम बुद्धि से तादात्म्य स्थापित कर अपने को या आत्मा को सोया जागा ऐसा बना रहे। इसका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। एक बात आप और देखें कि इसके छठे मंत्र तक जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तैय का वर्णन, सातवें में परम तत्व का वर्णन, न बहिष्प्रज्ञम न अंतः प्रज्ञम न उभय प्रज्ञम, ऐसा करके वो मंत्र आएगा। और आठवें मंत्र से ओम की व्याख्या शुरू करेंगे, आ ऊ मा बनाकर ध्यान की प्रक्रियाएं बतलाएंगे कि ऐसे ऐसे ध्यान करो। उसका अर्थ केवल इतना ही है कि जो अधिकारी हैं, जो उत्तम अधिकारी हैं, वो तो दूसरे मंत्र से आगे जाने की जरूरत नहीं है। अयम आत्मा ब्रह्म, इसी की व्याख्या में उनकी पूर्ति हो जाती है। आप समझ लो कि उनका सारे भ्रम, संशय, विपर्य, संदेह दूर हुए और आत्म तत्व का बोध हो गया, उनको इसके आगे जाने की जरूरत नहीं। लेकिन जो मध्यम अधिकारी हैं, जो ये समझते भी हैं और फिर नहीं भी समझते, बात समझ में भी आती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, बात समझ में भी आती है। देखो, समझने की बात यही है कि जैसे हम कहते हैं कि मैं सोया, ये शब्द ही अपने आप में गलत कि मैं सोया, इसको कौन जानता है, इसका अनुभव किसको है कि मैं सोया। जब आप इस बात पर विचार करोगे, जो ये कहे कि मैं बड़े आराम से सोया, बड़े सुख से सोया, तो एक सीधी सी बात है, जो सुख से शब्द कह रहा है वो सोया नहीं, उसका ये जो अनुभव कर रहा है वो सोएगा कैसे, और अगर सो जाएगा तो अनुभव नहीं कर सकता, बात खत्म हो गई। ऐसे ही मौत के बारे में भी है, कभी किसी को अपनी मौत का अनुभव नहीं हुआ कि मैं मर गया या मैं वो करूंगा, लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि नहीं मैं मर जाऊंगा, ये भविष्य की बात अपने आप में करते, क्योंकि हमने मरते हुए को देखा या ऐसा सुना है कि सब मरते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि ये शरीर को भी अगर आप कहो मरता है तो ये भी शरीर भी पंचभूतों का है, पंचभूत कभी आज तक मरे नहीं। कभी भी कोई कहे कि पंचभूत मर गए, मिट्टी मर गई, ये कोई समझ में नहीं बात आए। तो ना तो मिट्टी कभी मरती है, ना पानी कभी मरा है, ना आज तक अग्नि मरी है, ना हवा, ना जल, ये कुछ ये मरते नहीं। तो पंचभूतों का बना हुआ ये शरीर कहां से मर जाएगा। तो मौत किसी भी तरह से आप सिद्ध नहीं कर पाओगे, इस बात को समझोगे भी, लेकिन समझते हुए भी फिर भी ना समझी की बात करें। जो वैराग्यवान है पूरी तरह से, जिनकी पहले बात की कि जो अधिकारी है, उसके लिए तो अयम आत्मा से बात खत्म हो गई, आगे की उसको कोई जरूरत नहीं रही। अब जो बीच वाले हैं, मध्यम अधिकारी, हम जैसे लोग कि जो समझते भी हैं लेकिन फिर भी पूरी तरह से देह से अपने आप को अलग नहीं कर पाते, देहाध्यास से हम छूट नहीं पाते, इसलिए बीच में डरते रहे। जब सुनते हैं कि मौत किसी की नहीं, तो एकदम लगता है कि हाँ ये तो बात ठीक है, मरना मराना का है, और फिर दो मिनट बाद जब कहेंगे कि अमुक मर गया, तो फिर हम रोने भी चले जाएंगे, कंडोलेंस मीटिंग में भी जाएंगे कि बड़ा ऐसा हो गया जी, वो चला गया, और ये अभी दो मिनट पहले ये बात हो रही थी कि ना आत्मा मरती है, ना ये मरता है, ना वो मरता है। तो इसको बीच में जो अडल्ट्रेशन हो गई, आप ऐसा कहें, तो दो चीजों का मिल जाना, जड़ और चेतन का, असल में जड़ और चेतन कभी आज तक ना मिले हैं ना मिल सकते हैं, मिल ही नहीं सकती ये दो चीजें, जो विरोधी हों कहां से आपस में मिलेंगे। वास्तविकता ये है कि ये एक ही चीज के दो रूप है, जड़ और चेतन अलग नहीं है, चेतन का ही घनीभूत रूप जड़ है और जड़ का ही सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप चेतन। चेतन ही जड़ के रूप में नजर आ रहा है और जड़ ही सूक्ष्म होता होता चेतन बन जाता है। लेकिन अगर जो इस अवस्था को समझ ले, अवस्था का मतलब होता है कि भाप बना हुआ भी पानी ही है, भाप बनके वो पानी कहां उड़ गया ऊपर आकाश में, पता ही नहीं लगता उसका। लेकिन वही पानी बादल बन जाए तो घना हो गया, वर्षा बन के गिरे तो और हो गया, बर्फ बन जाए तो और वैसा बन गया, और बर्फ से भी अगर वो स्फटिक मणि बन जाए, क्योंकि बर्फ ही पड़ी पड़ी पत्थर का रूप बन जाती है, तो वो पत्थर बन गया। असल में है पानी ही वो, ऐसा नहीं है कि वो पत्थर स्फटिक मणि अलग चीज हो और पानी अलग चीज। बर्फ का एक 40 केजी का एक टुकड़ा अगर पानी की झील पर तैर रहा हो तो वो पानी ही पानी पर तैर रहा है, ये शास्त्र की भाषा। लेकिन आम आदमी के लिए ये बात समझ पाना ठीक नहीं है, वो सोचता है कि ये दो अलग चीजें हैं, क्योंकि दोनों के काम भी अलग हैं, दोनों की शक्ल भी अलग है, दोनों के नाम भी अलग है। एक को पानी कह रहे हैं, एक को बर्फ कह रहे हैं, नाम भी अलग है, काम भी अलग है, तो दोनों एक कैसे हो सकते हैं? जब तक ये बात किसी की समझ में नहीं आती कि दोनों एक ही हैं, तब तक के लिए ये सारी व्याख्याएं, तब तक के लिए उस बर्फ को तोड़ना भी पड़ेगा, उसको कूटना पड़ेगा, फिर उसको पानी बनाना पड़ेगा, फिर उसको दिखाना पड़ेगा, फिर उसको बर्फ के कारखाने में ले जाकर पानी बर्फ कैसे बनता है यह भी दिखलाना पड़ेगा। तो कुछ तो इस बात को समझ के ग्रहण कर लेंगे, लेकिन बहुत सारे 98% कहेंगे कि नहीं, बर्फ फिर भी बर्फ ही होती है। कितना भी समझ में आ जाए, सामने भी हो रहा है कि एक ही है, लेकिन ये बात उनकी समझ में नहीं आएगी। इसलिए फिर शास्त्र ने उनके लिए और तरह के काम बना लिए, उनके लिए ध्यान की प्रक्रियाएं हैं, पूजा की प्रक्रियाएं हैं, आरतियां करते रहो, ये मूर्ति बनाओ, हफ्ता भर खूब उनकी पूजन करो, फिर उसका विसर्जन कर लो, फिर बना लो, फिर करते रहो, वो इसमें लगे रहें, कभी न कभी समझ आ जाएगी कि तत्व तो एक ही है। तो वो इसलिए बनाया गया, बाकी इतना कुछ जितना कुछ भी हम कहते हैं कि ये, चाहे उसको आप उपासनाएं कहो, पूजाएं कहो, जो मर्जी, नवरात्रों में हम ऐसा ऐसा करते हैं, उन दिनों में ये वाला करते हैं, कभी देवी की पूजाएं, कभी किसी की, कभी किसी की, कभी किसी की, तो उससे लाभ केवल इतना होता है कि जिनकी समझ अभी आगे नहीं बढ़ी वो तो उधर लगे हुए हैं, तो जो समझ वाले हैं उन्हें मौका मिल जाता है, नहीं तो सारी भीड़ एक जगह पर हो तो ये चिंतन कर ही ना सको। इसलिए ढोल बजाने वालों की अलग मंडली बना दी गई, खूब आधी रात से शोर करो, ढोल बजाओ, ये करो। वो भी अगर वो ना बना होता तो वो यहां बैठे होते, वो ढोल बजाते रहते हैं, हम अपनी बात कोई आपकी सुनता ही नहीं। लेकिन वो इसी को सीढ़ियां कहते हैं, वो जागृत है, ये स्वप्न है, वो तुरिये तक पहुंचना है, बात घुमा फिरा के वहीं की वहीं रहेगी कि पकड़ना तत्व को है। तो मैं आपसे एक ये बात कह रहा हूं कि ये जो चार अवस्थाएं यहां कही गई, जो छठे श्लोक में जाकर नींद की बात कह दी उन्होंने कि ये तुरीय तत्व है, असल में जागना, सोना, उठना, इन सब का मैं स्वयं साक्षी हूं, इन सब का अनुभव मुझे होता है।